मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 16 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही नए उत्साह और जोश खरोस के साथ अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान दोस्तों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आकाश कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, शिखा मिश्रा देवरिया उत्तर प्रदेश से और गुलशन इटावा उत्तर प्रदेश से। तो आकाश, शिखा और गुलशन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय में हम इतिहास की तैयारी के बारे में कुछ बातें करेंगे और आपको ध्यान होगा कि फ्राइडे को मैंने आपसे वायदा किया था कि यदि कोई विशेष घटना नहीं हुई तो इतिहास की तैयारी की कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार मेरे पास स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं कि तैयारियों के पैटर्न के बारे में भी कुछ बताया जाए। खैर, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले कुछ दूसरी खबरों को दोस्तों देख लेते हैं। एक खबर आपने सुनी, पहली खबर जो सुनी कल के न्यूज में, रेडियो न्यूज में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी दो देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें एक है स्वीडन और दूसरा है ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल देशों की जो बैठक होनी है उसमें प्रधानमंत्री जी भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, यहां दो चीजें खासकर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी भी शायद इसी पैटर्न पर होनी चाहिए। सारी तैयारी हम केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते, अनुमान हम जरूर लगाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है कि एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन हम चीजों को समझ सके, बाकी चीजों को, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें जानें। जैसे राष्ट्रमंडल देश, अब ये राष्ट्रमंडल देश क्या हैं, कैसे बने हैं, इनका क्या उद्देश्य है। अभी अभी राष्ट्रमंडल खेल आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में समाप्त हुआ है, तो अगर हमें राष्ट्रमंडल के खेल को जानना है तो राष्ट्रमंडल देशों को तो जानना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों में अब जो भी भाग ले रहे हैं, अब आप जब मेडल की टैली को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें इंग्लैंड है, लेकिन बहुत से दूसरे जो बड़े नामी देश हैं खेल के क्षेत्रों में वो वहां नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। तो ये पता आपको तब लग पाएगा जब आप राष्ट्रमंडल देशों के बारे में जानेंगे। दूसरी बात मित्रों, आपने जब न्यूज सुनी तो उसमें एक शब्द आपको मिला, नार्डिक। नार्डिक शब्द आपको सुनने को मिला होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वीडन जा रहे हैं तो इस नार्डिक का संबंध इस स्वीडन से है, तो आपको पता लगाना चाहिए कि भई ये नार्डिक है क्या। ये नहीं कि ठीक है नहीं पूछा जाएगा यार क्या करना है, इसलिए कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये नार्डिक शब्द आएगा और विश्व इतिहास आपके सिलेबस में है। यहां तक कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां भी नार्डिक शब्द आएगा, आ सकता है। तो फिर अगर आपको नार्डिक शब्द का अर्थ नहीं मालूम है कि भाई इसका मतलब क्या है या कौन से देश इसमें आते हैं या क्या है ये, तो आप उन चीजों को कैसे समझेंगे। और सिविल सर्विस समझने पर मित्रों सबसे ज्यादा जोर देता है। तो अब आप देखिए कि जब आप नार्डिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है कि दरअसल ये जो उत्तरी यूरोप है, बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा है जो नॉर्थ अटलांटिक में आएगा, वहां के कुछ देशों को नार्डिक देश कहा जाता है, जिसको खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है, उन्हें नार्डिक कंट्रीज कहा जाता है। और इसमें जो आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और जहां हमारे अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं स्वीडन, तो इसलिए नार्डिक, वहां एक सम्मेलन हो रहा है नार्डिक देशों का, आपस में एक सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। फिर अब आप जब देखेंगे भाई ये नार्डिक इनका नाम क्यों पड़ा, तो बेसिकली मित्रों नार्डिक वहां के लोगों का एक समूह है, वहां के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें नार्डिक माना जाता है, और खासकर उत्तरी यूरोप इस क्षेत्र में ये वो लोग हैं जो जर्मन मूल के हैं। इनकी अपनी एक पहचान है अलग तरीके से, प्रजाति तो नहीं है उस तरीके से, आप प्रजाति नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम कहते हैं आर्य है, ये द्रविड़ है, खैर आर्य तो एक प्रजाति हो जाती है, मंगोलियाड एक प्रजाति हो जाती है, ऑस्ट्रेलियाड एक प्रजाति हो जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं उनके रंग रूप को देख करके। तो अक्सर जो नार्डिक लोग होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, उनके बाल जो है ना बड़े भूरे होंगे, उनकी जो आंखें होंगी वो गहरी नीली होंगी, और जो बाल होंगे वो लंबे भी होंगे, भूरे होने के साथ साथ लंबे होंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो नार्डिक कहलाते हैं। तो इन चारों पांचों देशों में वो लोग रह रहे हैं, जिन्हें नार्डिक कंट्री कह दिया जाता है। तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, और इसी में जो है ग्रीनलैंड आइलैंड जैसे देश भी आ जाते हैं। इसके बाद मित्रों जो दूसरी खबर थी, खासकर वो सीरिया की समस्या को लेकर के थी। आपको पिछले सप्ताह मैंने सीरिया के मामले को लेकर के एक आर्टिकल भी प्रोवाइड किया है, और मैंने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि सीरिया की मूल समस्या क्या है। अब आप देख रहे हैं कि यूएनओ में रशिया प्रस्ताव लेकर के गया, और जो रशिया है वो अभी सीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके समर्थन में है, और जो अमेरिका है वो उस राष्ट्रपति के विरोध में है। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वहां की जो सत्ता है, वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि स्थिति खराब होती चली जा रही है, और अमेरिका और दूसरे देश भी अब वहां अटैक कर रहे हैं सीरिया पर, खासकर केमिकल वेपन्स की बात को लेकर के। तो इसको लेकर के जब रशिया यूएनओ में गया इसको रोकने के लिए, उसने अमेरिका के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आया, तो उसे खारिज कर दिया गया। यहां तक कि यह घटना है, अब आगे देखिए कि घटना क्या रूप लेती है। लेकिन जिस तरह से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, उस स्थिति को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें। मित्रों इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो गए हैं। अब आप देखिए कि राष्ट्रमंडल खेल में जो न्यूज है वो है कि भारत जब से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है तब से उसने अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये न्यूज में भी आ रहा है और अखबारों में भी है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और उसके जो गोल्ड मेडल है वो 26 गोल्ड मेडल है इस बार। अब इसकी आप समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए मैं सिविल सर्विस के पॉइंट से कह रहा हूं, जब आप केवल न्यूज पर बेस्ड होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, भारत ने तो बहुत बड़ी उपलब्धि, और क्योंकि हम नहीं सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कि भारत ने 26 गोल्ड मेडल जीत लिए हो, नहीं सुनते हैं, तो लगता है कि अरे हमने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बहुत बड़ी सफलता पा ली। लेकिन जब आप इतिहास में जाकर के देखते हैं तो पता लगा कि जब दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब भारत ने 39 गोल्ड मेडल जीते थे, 39 गोल्ड मेडल, और टोटल 101 मेडल थे। तो अभी तो हमने 26 ही जीते हैं, मतलब उससे 66% ही हम रहे हैं। मुझे कभी कभी यह भी लगता है मित्रों कि देखिए तो क्या ऐसा होता है कि जब किसी देश में किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उस देश के खिलाड़ियों को अपने देश में खेलने से कुछ ज्यादा जोश आ जाता है, इमोशनल एनर्जी मिल जाती है, या वहां का वातावरण सूट करता होगा। हमने सोची कि 39 क्योंकि हिंदुस्तान में हो रहा था। फिर इससे पहले 2002 में जब मैनचेस्टर में हुआ था तब भारत ने 30 गोल्ड जीते थे, उस समय भी हम ज्यादा थे, और अभी जब गोल्ड कोस्ट में हुआ है तो हम केवल 26 जीते हैं, और टोटल मेडल में भी जब मैनचेस्टर में हुआ था तो हम 69 जीते थे और अभी हम टोटल मिला के 66 जीते हैं। तो आप पाएंगे कि पता लगा कि इन तीनों जो हमारे बेस्ट जो प्रदर्शन रहे हैं, जिसमें हम एक 2002 को ले रहे हैं, फिर 2010 को ले रहे हैं, और अब 2018 को ले रहे हैं, तो इन तीनों में हम सबसे कम है, नीचे है तीनों में, हमारा तीनों में प्रदर्शन जो है न्यूनतम रहा इस बार, अदरवाइज हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो मित्रों मैं केवल एक एनालिसिस करने का आपको तरीका बता रहा हूं, एनालिसिस करने का क्या हमारा आधार होना चाहिए और आंकड़ों को हमें किस तरीके से सही मायने में विश्लेषित करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो एक खबर थी वो विधान परिषद को लेकर के थी, उत्तर प्रदेश बिहार में विधान परिषद। तो विधान परिषद क्या होती है, वक्त उतना नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लें कि विधान परिषद क्या। तो विधानसभा के बारे में तो आप लोग सुनते ही हैं, थोड़ा सा विधान परिषद की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं आता हूं दोस्तों मुख्य विषय पर, इतिहास की तैयारी। खासकर इसका जो संदर्भ है, जब जलियांवाला बाग को आप देख रहे हैं कि 100 ईयर्स में हम 13 अप्रैल को एंटर कर गए हैं, और जलियांवाला बाग को लेकर के अब जो भी प्रोग्राम्स हमारे सामने आएंगे तो इसी को आधार बना करके मैं इतिहास की तैयारी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था। एक बात मैं आपको बता दूं कि इतिहास की तैयारी को लेकर के बकायदे YouTube पर मेरा एक प्रोग्राम अवेलेबल है, डिटेल्स में जानने के लिए आप उसे देख लेंगे, और मैं समझता हूं कि आपको देख लेना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो रही है इस टॉपिक को जानने की। तो मित्रों हमेशा आप अपनी नजरें खुली रखिए कि इस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे आप 2018-2019 की हम बात करें, मतलब मेंस की और प्री की भी, तो प्री में तो ठीक है, अब 2018 के प्री से अब की घटनाओं का ज्यादा संबंध नहीं रह जाएगा। आप मान लीजिए कि मार्च तक की घटनाएं उसके लिए सफिशियंट है, पेपर सेट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो मार्च तक के क्वेश्चंस आएंगे प्री में, लेकिन मेंस में तो पूछे जा सकते हैं और 2019 तक वो चलेगा, इतना लंबा मेंस के लिए रहता है क्योंकि मेंस में एनालिटिकल चीजें आपको लिखनी होती हैं, तो घटना ऐसा नहीं कि आया और खत्म हो गई। प्री में तो वो संभावना होती है कि घटना आई और चलिए बढ़ भी रही है, तो जितनी घटना हुई है उसी को आधार बना करके आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन मेंस बहुत लंबे काल को अपने में कवर करता है, लगभग 1.5 से 2 साल तक को वो कवर कर लेता है मेंस। अब आप देखिए कि इतिहास में क्या होता है कि दो तरह की चीजें होती हैं। पहला है कि ऐतिहासिक, कोई ऐतिहासिक घटना किसी वजह से चर्चा का कारण बन जाती है, वजह कोई भी हो सकती है, जैसे जलियांवाला बाग 100 साल पूरे होने के कारण वो चर्चा का विषय बन गई, चंपारण आंदोलन उसके साथ भी यही हुआ, 100 साल पूरा होने के कारण वह उस विषय बन गई। जैसे पूना पैक्ट को आप ले लीजिए, पूना पैक्ट अभी आप देख रहे हैं कि दलितों का जो मामला चल रहा है, पहले दलित आंदोलन हुए, फिर एंटी दलित आंदोलन, इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, तो इसके कारण जो दलित विकास का जो मुद्दा है वो अभी केंद्र में आ गया, चर्चा में आ गया, बहस का विषय बन गया है। तो इससे जुड़ा जो इतिहास हमारा रहा है, और खासकर 2-3 चीजें, पहली बात तो यह पूना पैक्ट जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, और इससे पहले भी जो इसको लेकर के सामाजिक आंदोलन हुए हैं, साउथ में इस तरह के आंदोलन हुए दलितों के विकास के लिए, ज्योतिराव फूले साहब थे, इस तरह के जो हमारे सामाजिक सुधार का नेतृत्व करने वाले जो लोग रहे हैं, स्वाभाविक है कि हमें उन्हें भी देखना चाहिए, स्पेशली उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो मित्रों, ये तो इसका एक पक्ष है कि जो घटनाएं किसी भी वजह से चर्चा के केंद्र में आ जाती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, प्री की दृष्टि से भी और मेन्स की दृष्टि से भी। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है टोटल हिस्ट्री की तैयारी किया जाना। जब आप टोटल हिस्ट्री की बात करते हैं मित्रों, तो उसमें आप देखिए कि मेंस और प्री का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। प्री में ज्यादातर क्वेश्चन फ्रीडम मूवमेंट से आने शुरू होते हैं, और बड़ी बात यह है कि उसमें तथ्यों पर आधारित भी प्रश्न होते हैं, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के और आजादी की प्राप्ति तक की जो आपको तैयारी करनी है वो दोनों एक ही दृष्टि से करनी है, कि ये प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। जैसे अगर हम फ्रीडम मूवमेंट से पहले का इंडियन हिस्ट्री ले लें, तो बट नेचुरल कि आप उसकी तैयारी केवल प्री के लिहाज से करते रहिए। प्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट लिटरेचर कल्चर आर्किटेक्ट इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं, थोड़े क्वेश्चन फिलोसफी को लेकर के हो जाते हैं, वो भी एक तरह से हमारे कल्चर का पार्ट होता है। तो जो फ्रीडम मूवमेंट से पहले का जो इतिहास होगा वो आप बहुत सामान्य तरीके से पढ़ेंगे, उसमें कंटेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में आप जैसे एंटर करते हैं, या यू कह लीजिए टू सम एक्सटेंट जैसे आप मॉडर्न इंडिया में एंटर करते हैं, आपको कंटेंट पर भी ध्यान देना है और एनालिसिस पर भी ध्यान देना है। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने इतिहास की तैयारी के बारे में आपसे की है, वक्त इतनी ही बात करने की इजाजत दे रहा है। तो दोस्तों, अब मैं अपने मुख्य विषय की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अविनाश शर्मा, दीपक चौधरी, आकांक्षा जैन, गिरधर प्रणामी, प्रिया मिश्रा, ज्योति राजौरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से, राजेश कुमार, अभिषेक जाट, अभिषेक मिश्रा भोपाल से, और अर्जव पारिक। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।